नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को कहा कि सेवानिवृत्ति कोष निकाय ईपीएफओ का दायरा मौजूदा 6.5 करोड़ सदस्यों से बढ़ाकर 10 करोड़ सदस्यों तक किया जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के 70वें स्थापना दिवस पर आयोजित एक समारोह में यादव ने कहा, ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे का विस्तार किया जाएगा, इसे 6.5 करोड़ सदस्यों से बढ़ाकर 10 करोड़ किया जाएगा। उन्होंने ईपीएफओ के विजन 2047 दस्तावेज का अनावरण भी किया। उन्होंने कहा कि ईपीएफओ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने मुकदमों को कम करना और प्रसार को बढ़ाना है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने मंगलवार को बताया कि अक्टूबर में उसकी कुल बिक्री 21% बढ़कर 1,67,520 इकाई हो गई है। कंपनी ने पिछले साल इसी महीने कुल 1,38,335 इकाइयां बेची थी। अक्टूबर में यात्री वाहनों की कुल घरेलू बिक्री 1,47,072 इकाई रही, जो सालाना आधार पर 26% अधिक है। एक साल पहले इसी महीने में घरेलू यात्री वाहनों की कुल घरेलू बिक्री 1,17,013 इकाई थी। अक्टूबर 2021 में मिनी सेगमेंट में कारों की बिक्री बढ़कर 24,936 इकाई हो गई। इस खंड में ऑल्टो और एस्प्रेसो जैसे मॉडल शामिल हैं। बलेनो, सेलेरियो, डिजायर, इग्रिस, स्विफ्ट, टूर एस और वैगनार सहित कॉम्पैक्ट कारों की बिक्री पिछले महीने बढ़कर 73,685 इकाई हो गई। एक साल पहले इसी महीने में ये आंकड़ा 48,690 था। विमान ईंधन यानी ATF की कीमत मंगलवार को 4.2% बढ़ा दी गई। हालांकि होटल जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में इस्तेमाल होने वाला LPG सिलेंडर 115.5 रुपये सस्ता हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में एविएशन टरबाइन ईंधन की कीमत 4,882.37 रुपये प्रति किलोलीटर या 4.19% बढ़कर 1,20,362.64 रुपये प्रति किलोलीटर कर दी गई है। पिछले महीने विमान ईंधन की कीमत में 4.5% की कटौती हुई थी। इसके अलावा तेल कंपनियों ने राष्ट्रीय राजधानी में 19 किलो के वाणिज्यिक LPG सिलेंडर की कीमत 1,859.50 रुपये से घटाकर 1,744 रुपये कर दी। जून के बाद से वाणिज्यिक LPG की कीमतों में ये सातवीं कमी है। कीमतों में कुल मिलाकर जून से अब तक प्रति सिलेंडर 610 रुपये की कमी हुई है। घरेलू रसोई में इस्तेमाल होने वाले LPG सिलेंडर की कीमत 1,053 रुपये पर अपरिवर्तित रही। वास्तु एवं सेवा कर संग्रह यानी GST अक्टूबर में 16.6% बढ़कर 1.52 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। ये अब तक का दूसरा सबसे अधिक GST संग्रह है। GST संग्रह अप्रैल में लगभग 1.68 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुँच गया था। पिछले साल अक्टूबर में यह आंकड़ा 1.30 लाख करोड़ रुपये से अधिक था। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक अक्टूबर 2022 में सकल GST संग्रह 1,51,718 करोड़ रुपये था। इसमें केंद्रीय GST 26,039 करोड़ रुपये, राज्य GST 33,396 करोड़ रुपये और एकीकृत GST की हिस्सेदारी 81,778 करोड़ रुपये है। बयान में कहा गया कि उपकर के जरिए 10,505 करोड़ रुपये जमा हुए। GST संग्रह लगातार 8 महीनों में 1.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है। सितंबर 2022 में 8.3 करोड़ ई वे बिल निकाले गए, जो अगस्त 2022 के 7.7 करोड़ ई वे बिल से काफ़ी अधिक है। MG मोटर इंडिया ने मंगलवार को बताया कि अक्टूबर 2022 में उसकी खुदरा बिक्री सालाना आधार पर 53% बढ़कर 4,367 इकाई हो गई। MG मोटर इंडिया ने एक बयान में कहा कि कंपनी ने पिछले साल इसी महीने 2,863 इकाइयां बेची थी। कंपनी ने बताया कि समीक्षाधीन अवधि में उसका मासिक उत्पादन बढ़कर 5,008 इकाई हो गया, जिसमें 784 इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं। नए ऑर्डर और उत्पादन में धीमी लेकिन मजबूत गति से बढ़ोतरी के बीच भारत में विनिर्माण गतिविधियाँ अक्टूबर में मजबूत रहीं। हालांकि इस दौरान कीमतों का दबाव भी बना रहा। एक मासिक सर्वेक्षण में मंगलवार को ये बात कही गई। मौसमी रूप से समायोजित S&P ग्लोबल इंडिया विनिर्माण खरीद प्रबंधक सूचकांक सितंबर में 55.1 से बढ़कर अक्टूबर में 55.3 हो गया। अक्टूबर के पीएमआई आंकड़ों के साथ ही लगातार 16वें महीने में समग्र परिचालन स्थितियों में सुधार देखने को मिला। पीएमआई की भाषा में 50 से अधिक अंक का अर्थ है कि गतिविधियों में विस्तार हो रहा है, जबकि 50 से कम अंक संकुचन को दर्शाते हैं। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस में अर्थशास्त्र की संयुक्त निदेशक पोलियाना डी लीमा ने कहा, भारतीय विनिर्माण उद्योग ने अक्टूबर में फिर से लचीलापन दिखाया। कारखाने के ऑर्डर और उत्पादन में जोरदार वृद्धि हुई। सर्वेक्षण के मुताबिक भारतीय विनिर्माता अक्टूबर 2023 तक उत्पादन में बढ़ोतरी को लेकर आश्वस्त हैं। लीमा ने कहा कि विनिर्माताओं को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में मांग में उछाल बना रहेगा। सर्वेक्षण में कहा गया है, विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार उल्लेखनीय दर से बढ़ा है, जो मार्च 2005 में इन आंकड़ों का संग्रह शुरू होने के बाद से सबसे मजबूत महीनों में एक रहा। अरबपति कारोबारी एलन मस्क ट्विटर के लिए बड़े बदलाव कर रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया मंच के मालिक के रूप में उन्हें अपने पहले सप्ताह में कई बड़ी बाधाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। कंपनी द्वारा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को सोमवार को दी जानकारी के मुताबिक ट्विटर के नए मालिक ने निदेशक मंडल को भंग कर दिया है और खुद को बोर्ड का एकमात्र सदस्य बना लिया। मस्क ने बाद में ट्विटर पर कहा कि नई बोर्ड व्यवस्था अस्थायी है, लेकिन उन्होंने कोई विवरण नहीं दिया। वो उपयोगकर्ताओं के लिए भुगतान पर आधारित वेरिफिकेशन की संभावनाएं भी तलाश रहे हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।